ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय अध्याय सत्र श्री शुक उवाच जतश्चान्तर्हितोऽनन्त तस्यै कृत्वा दिशे नमः विद्याधरश्चित्रकीर्तिः चचार गगनेचरः सलक्षम् दर्शलक्षाणाम् अव्याहतबलेन्द्रियः स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः शुद्धचारणैः कुलाचलेन्द्रद्रौणीषु मानसङ्कल्पसिद्धिषु रेणी विद्याधरस्त्रीभिः गापयन् हरिमीश्वरम् श्रीशुक उवाच शूलसुखदेव गोस्वामी ने कहा जतः जिस अंतर्हितः च अंतर्हितः अंतर्हित हुए अनंतः भगवान शंकर सिंह तस्वै उस कृत्रा करके दिशे दिशा को नमः नमस्कार विद्याधरः विद्याधर बने हुए चित्रकेतु हो चित्रकेतु महाराज चचारा विचरण करने लगे गगने चरह विमान से कल कथा चल रही थी कि चित्रकेतु महाराज अपने पुत्र के मुख से तत्वोपदेश सुने तथा श्री नारद जी और अंग्रेज के मुख से तो उन्हें ज्ञान हो गया कि सत्य क्या है और इस बात पर भी उन्हें ज्ञान हो गया कि असत्य क्या है यह प्राकृत जगत और प्राकृत जगत के जो संबंध हैं जो वस्तुएं हैं वास्तव में ये दुखद हैं वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं और सुख के लिए श्री नारद जी ने बताया भगवान का नाम जपना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे और श्री नारद जी ने उन्हें स्तोत्र का ज्ञान देते हुए यह कहा कि यदि सात दिन सात रात आप इसका जप करेंगे तो आपको भगवान शंकरसन का साक्षात दर्शन मिलेगा तो चित्रकेतु महाराज जमुना में स्नान करके आए और श्री नारद जी से वह मंत्र लिए उस मंत्र का उन्होंने जप किया यह वर्णन है कि सात दिन कोई भी अन्न या फल नहीं खाए केवल अभक्ष जल पीकर जप कर रहे थे निराहार रहकर के जब भगवान का नाम जपा जाता है तो उसमें सद्गुण बढ़ जाता है उसको और लाभ देता है लेकिन जो लोग बिना खाए नहीं जप कर सकते हैं तो उनके लिए अच्छा है कि खा करके जपे लेकिन जप करना चाहिए जैसे भी तो चित्रकेतु महाराज जल पीकर भजन किए जप किए तो सातवें दिन वे भगवान शंकरष्ण देव के पास पहुंच गए अर्थात उन्हें दर्शन मिला भगवान शंकरष्ण देव का धाम के साथ परिकरों के साथ वे भगवान को प्रणाम किए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब महाराज चित्रकेतु प्रणाम कर रहे थे भगवान शंकरषण को, तो उस समय भगवान शंकरषण के चरण कमल रखने की जो चौकी थी वह चित्रकेतु महाराज के आंसुओं से बिल्कुल भींग गई। इतने रोमांच और अश्रु वर्षण हो रहा था। भगवान जीवों के वास्तविक बंधु हैं, वास्तविक हितैषी हैं। बहुत काल के बाद भगवान का दर्शन मिला, इसलिए आनंद के विकार छा गए शरीर में। कपकपी होना, आंसू आना, वाणी का गदगद हो जाना, ये सब विकार, अष्टसात्विक विकार। जिस तरह माया के संपर्क में आने पर जीव में विकार होता है, माइक विकार, उसी तरह भगवान के संपर्क में आने पर जीव का स्वरूपगत कुछ है, विकास होता है, विकार होता है, उसे अष्टसात्विक विकार कहते हैं। महाराज चित्रकेतु में यह था। तो वे भगवान की स्तुति की, बहुत लंबी स्तुति है। मैं इसीलिए उसको नहीं लिया कि बहुत थोड़े काल में उसको पूरा नहीं किया जा सकता। अपनी स्तुति में चित्रकेतु महाराज ने भगवान नाम की बहुत महिमा गाई है। तो जब स्तुति पूरा कर चुके तो भगवान ने भी पुनः उनको ज्ञान दिया, जैसे नारद जी ने ज्ञान दिया था वैसे श्री भगवान वाच, श्री भगवान स्वयं अपने मुख कमल से इनको ज्ञान दिए, वह भी बहुत काफी है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद, भगवान का दर्शन करने के बाद, चित्रकेतु महाराज विद्याधर हो गए। वैसे जप करने के कारण ही विद्याधर हो गए। विद्याधर देवताओं की एक जाति है, ये मनुष्य थे, लेकिन भगवान का जप करने से देवत्व को प्राप्त हो गए। देवता जैसा उनका शरीर सुंदर हो गया, वही शरीर, शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर प्राप्त नहीं किए। जैसे आप लोगों ने सुना है ध्रुव महाराज इसी शरीर से भगवान का धाम चलेगा, चिन्मय शरीर से। तो चित्रकेतु महाराज भी विद्याधर हो गए, विद्याधर ही नहीं विद्याधरों के अधिपति हो गए। एक ग्रुप है, जाति है देवताओं के, उसके वे नायक हो गए। और भगवान ने उनको एक विमान दिया, चिन्ह विमान था, दिव्य विमान था, उस पर चित्रकेतु महाराज भ्रमण करने लगे। तो इस श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं कि जतश्चांतर हितो नंत, जिस दिशा में भगवान अंतरहित हुए संकर्षण दे, दर्शन दे करके, बात करके, तस्य कृत्वा दिशा नमः, उस दिशा को चित्रकेतु महाराज ने प्रणाम किया। भगवान अंतरहित हुए तो ऐसे जा रहे थे, जाते जाते अंतरहित हुए, जिस दिशा में वो छिप गए अंतरहित हुए उस दिशा को प्रणाम किए। वैष्णवों में यह परंपरा है भगवान को प्रणाम करने की, जब पट खुलता है तब भी प्रणाम किया जाता है और पट बंद होता है भगवान का तब भी प्रणाम किया जाता है। तो चित्रकेतु महाराज पट बंद होने पर प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए उस दिशा को, और विद्याधर हो ही गए थे उस विमान पर चढ़कर चचार पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। क्या काम था इनका, आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो शरीर और इंद्रियों की शक्ति कैसी थी, सलक्षण वर्ष लक्षणम अव्याहत बलेन्द्रिय स्तूयमानो महायोगी मुनिभि सिद्धचारण ही। सलक्ष वर्ष लक्षणम, लाखों लाखों वर्ष तक बिल्कुल स्वस्थ रहे, शरीर में बल बना रहा और इंद्रियों की पटुता ज्यों की त्यों रही, आंख खराब नहीं हुई, कान में कोई मशीन नहीं डालना पड़ा, पैर के लिए कोई छड़ी डंडे लेकर नहीं चलना पड़ा, इसकी शक्ति कम हो जाती, सहारा लेना पड़ता है मनुष्य। लेकिन ये सब लक्षम वर्ष लक्षणम, लाख से लाख का गुना करेंगे इस तरह से। अव्याहत बलेन्द्रिय, इनका शारीरिक बल और इनके इंद्रियों की क्षमता अव्याहत रही। स्त्री मानो महायोगी मुनि ही सिद्धचारण, इतने महान वैष्णव हुए भगवान के परम भक्त कि मुनि भी मुनियों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा और चारणों के द्वारा स्त्री मानो इनका यश गाया जाता था। सात दिन भगवत भजन करके चित्रकेतु ने यह गति पाई, परंतु उसमें मुख्य है श्री नारद जी और अंगिरा जी की कृपा। उनका संग, उनके प्रवचन का प्रभाव, 7 दिन में यह गति मिलना बहुत ही अद्भुत बात है, लेकिन ये हुआ है। तो मुनियों के द्वारा उनकी स्तुति होती है, मुनि स्तुय मानो, सिद्ध स्तुय मानो, चारण स्तुय मानो, महायोगी, ये महायोगी थे। महायोगी का अर्थ है महाभक्त, महाभागवत। चित्रकेतु हो गए, वही चित्रकेतु जो पुत्र की ममता में इतने व्याकुल थे, पुत्र के बिना लगता था कि उन्हें संसार शून्य हो गया, वही अब भगवान के परम भक्त हो गए। और संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग इनका यश गाते थे। स्तुय माना का यह अर्थ है कि इनके भक्ति की प्रशंसा वे लोग किया करते थे। धन्य है चित्रकेतु महाराज, भगवान में इस तरह का अनन्य राग, अनन्य ममता। यह स्तुति का विषय, किसी भक्त की स्तुति भक्ति के कारण की जाती है, उसके शारीरिक क्षमता या धन आदि के कारण उसकी स्तुति नहीं की जाती है, भक्ति के कारण वो प्रशंसित होता है। तो जहां मुनि सिद्ध और चारण स्तुति कर रहे थे, वहां सहज समझा जा सकता है कितने बड़े भक्त थे, महायोगी थे। क्या करते थे ये, इनकी क्रियावली क्या रहती थी, इसका वर्णन करते हैं। कुला चलेन्द्र द्रोणी से नाना संकल्प सिद्ध से रे में विद्याधर स्त्री हुई दातयन हरिम ईश्वरम। इनका मुख्य काम था हरिम ईश्वरम गापयन, कीर्तन कराना और सुनना। श्रवण कीर्तन में रत रहते थे। कहां कहां? कुलाचल मेरु पर्वत के द्रोणीशु घाटियों में, जहां पर संकल्प मात्र से सभी वस्तुएं मिलती हैं, वहां पर विद्याधरों की स्त्रियों के साथ रहने, विद्याधरों की परम सुंदरी स्त्रियों के साथ रहते थे। परंतु बहुत ही सावधानी से सुनना चाहिए, क्या कार्य करते थे। स्त्रियों के साथ थे लेकिन इनमें बिल्कुल आसक्त नहीं थे। क्या इनका काम था? गापयन हरिम ईश्वर। स्त्रियों का कंठ बहुत सुंदर होता है, तो बिना बाजा के भी गाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। स्त्रियों को अपने साथ रखते थे और उनके द्वारा भगवान की कीर्ति गवाते थे, यही इनका कार्य था। गापयन हरिम ईश्वरम, यहां सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि स्त्रियों में आसक्त नहीं थे। हरिम गापयन हुए में, रेणु का अर्थ रमण करते थे, कैसे? कीर्तन कराते हुए सुनते हुए, इसी में रमते रहते थे। तो स्वयं पूछा रमन पूछा, इसमें रम रहे थे। तो परम सुंदरी स्त्रियों में इनका चित्त एक क्षण के लिए भी आसक्त नहीं होता था। यह इनके जीवन की सिद्धि थी। अपने जीवन में चित्रकेतु महाराज ने सबसे अधिक पसंद किया वह था भगवान का यश गान, और जो गाने में कुशल थे उनको साथ रखते थे। स्त्रियां गाने में कुशल होती हैं, स्वर की, विद्याधरों की, गंधर्वों की, अप्सराएं उनके साथ रहते थे। विद्याधर स्त्री भी बहुवचन में, बहुत सी स्त्रियां रहती थी और उनके साथ केवल भगवान का कीर्तन गाते थे, जस गाते थे। आनंद विवर्धनम प्रतिपदन, भगवान के कीर्तन में, गुणानुवाद में इतना रस है कि वह आनंद के समुद्र को भी प्रतिक्षण वर्धित करता है। इस आनंद में थे चित्रकेतु महाराज। वही व्यक्ति जो एक दिन मरे हुए जैसे लौट कर पृथ्वी पर रो रहा था, अब दूसरों को भी हरिम गापयन भगवत भजन में लगा रहा है, कीर्तन में, और अपने आप को लगा ही हुआ है। एक प्रकार से उन स्त्रियों का बहुत बड़ा भाग्य था जो चित्रकेतु महाराज के साथ रह रहे थे। उनको उन्होंने नियोजित किया था भगवान के कीर्तन में। एक बार की बात है, किस तरह से चित्रकेतु आसुरी जोनी में चले गए, इतने बड़े भक्त, उस कथा को कह रहे हैं। एक दास बिना विष्णु दत्ते न भास्वता गिरिशम बद्र से गच्छन परिप्तम सिद्ध चारण ही। एक दिन की बात है, चित्रकेतु महाराज विमान से जा रहे थे, कहीं और जगह जाना था तो बीच में कैलाश पड़ गया, कैलाश पर्वत, जहां वैष्णवों के गुरु श्री बुद्धेश्वर भगवान शिव रहते हैं। इच्छा तो हुई कि भगवान का दर्शन कर लें, शिव जी का दर्शन कर लें, सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े वैष्णव, कौन नहीं उनका दर्शन करेगा। स्त्रियों के साथ ये थे, जा रहे थे किस विमान से, विष्णु दत्तेन विमान में, विष्णु दत्त विमान से, किसी बोइंग फैक्ट्री में विमान नहीं बना हुआ था, भगवान ने डायरेक्ट दिया था, स्पिरिचुअल विमान था, उस पर वे घूमते थे। उसमें कभी पेट्रोल नहीं डालना पड़ता था, कहीं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि कोई नट बोल्ट खराब होकर गिर जाए या कुछ हो जाए। बहुत बड़े नगर के समान था, उस पर बहुत से लोग थे, स्त्रियां थी, और हमेशा उसमें बस कीर्तन होता रहता था, कीर्तन जस गाया जाता था भगवान। तो उस भाष्य का, उस परम भाषवान तेजस्वी चमकते हुए विमान से जा रहे थे गच्छन, तो उन्होंने गिरिशन बद्री से गए कैलाश पर, जो भगवान विष्णु, भगवान शिव की छवि वे देख रहे थे, अपने आप स्त्रियों के साथ थे, ये ध्यान देने की बात है। परंतु वो स्त्रियां सब वस्त्र पहन करके थी, भगवान का जस जा रहे थे। तो विमान नीचे उतरा, वो तो इच्छा गामी विमान था, आकाश में किसी भी ऊंचाई पर रुक सकता था कहीं भी। तो रोके देखे वहां पर ऋषि मुनि सब बैठे हुए थे, एक से एक सनत कुमार नारद जी ये सदा करके भगवान शिव से उपदेश ग्रहण करते हैं, भगवान की बातें सुनते हैं। वे सब बैठे हुए थे, तो चित्रकेतु महाराज देखे भगवान शिव की महिमा कितनी महान है, और काम को इन्होंने पूरा पूरा जीत लिया है। कामदेव को जीतने की बात क्या है, भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया, उनमें काम विकार क्या हो सकता है। और वे कथा कह रहे थे, सभा में बैठे थे हजारों हजार ऋषि मुनि थे। वहां चित्रकेतु महाराज ने देखा आलिंगन की कृतम देवी बाहुना मुनि संसदी, मुनि संसदी मुनियों के संसद में सभा में भगवान शिव देवी पार्वती को आलिंग अंकी कृपा आलिंगन करके गोद में बैठा लिए थे बाएं भाग, और प्रवचन कर रहे थे। और वहां एक से एक ब्रह्मचारी त्यागी परिव्राजक सब बैठे हुए थे, एक अद्भुत दृश्य था कि ब्रह्मवाद में रत, कृष्ण कथा में रत व्यक्ति अपनी पत्नी को गोद में बैठा करके प्रवचन कर रहे। इस बात से चित्रकेतु महाराज बहुत प्रसन्न हुए भगवान शिव की महिमा से, कि देखो इनके अंग में बैठी हुई परम सुंदरी पार्वती है, लेकिन इनमें कोई विकार नहीं हो पाता, यह इनकी भगवत्ता है। संसार में तो ऐसे मनुष्य उनको स्मरण मात्र से विकार हो जाता, और ये जान हमें बैठाए थे पत्नी को, उनकी कृपा, बल्कि गोद में सटा करके बैठाए थे, और प्रवचन चालू था, प्रश्नोत्तर चालू था, दिव्य विषय में स्पिरिचुअल मैटर सब हो रहा, क्योंकि मुनि संसदी मुनियों का समाज जुटा हुआ था, उसमें बैठे थे। इसको देख करके चित्रकेतु महाराज हंसे, ओ ये तमाशा देखो, स्वयं भी स्त्रियों के साथ थे, लेकिन ये हंसने लगे, देखो ये क्या तमाशा। अच्छा महिमा गा रहे थे, भगवान शिव इस बात को समझ गए और सभा कर सब लोग समझ गए, मित्र मित्र में विरोध चलता है, वैष्णव में भी ऐसा होता है। चित्रकेतु भी उसी ऊंचाई के महापुरुष हैं, भक्त हैं, जहां वहां और मुनि लोग बैठे थे ये लोग थे। तो उवाच दिव्य श्री अत्या जहां से चष्ट दम थी कहीं हंसे, और देवी सुन रहे थे, गिरजा जी सुन रहे थे, और गिरजा जी को सुनाते सुनाते और सब ऋषि मुनि सुन रहे थे, भगवान शिव सुन रहे थे, तो हंसने लगे, तो सबका टेंशन हो जाए, क्या बात भाई असमय में क्यों हंस रहे हैं, यहां अकस्मात कई आकर के सभासद के ओर देखकर हंसने लगे, तो या तो सबको हंसी आएगी अथवा क्रोध आएगा कि ये क्या कर रहा है। वो तो हंसने लगे, और उसके बाद उच्च जहां से वो बहुत जोर से हंसने लगे, और उसके बाद उवाच बोलने लगे। चित्रकेतु रुवाचा एष लोक गुरु साक्षात धर्मी वक्ता सरूरणाम आस्ते मुख्य सभायांगे मिथुनी भूय भाजया। देखो देखो ये लोक गुरु हैं, शिव जी को कह रहे हैं, ये लोक गुरु हैं, लोगों के अर्थात संसार में सबके ऋषि मुनियों के सबके ये परम गुरु हैं। ऐसा लोक गुरु साक्षात धर्मी वक्ता सरण और यही धर्म का उपदेश करते रहते हैं, अभी भी कर रहे हैं, ये आसन पर बैठकर धर्म का उपदेश कर रहे हैं। देखो ऐसा लोक गुरु साक्षात धर्मी वक्ता सरण आस्ते मुख्य सभावा नहीं मिथनी भूय भाग्य, ये धर्म का उपदेश कर रहे हैं, समस्त जीवों में सबसे श्रेष्ठ हैं और लोक गुरु हैं, लेकिन भार्या को अपनी पत्नी को गोद में बैठा कर बैठे हैं सभा में। देखो इनकी दशा, देखो भगवान सिंह तो बहुत गंभीर है, वो समझ रहे थे यह कोई आक्षेप नहीं था चित्रकेतु महाराज का, यह विरोध था वास्तव में। ये सभा में बैठे हैं, एकांत में नहीं मिल सकते थे अपनी स्त्री से, ये तो कोई आज का आदमी भी प्राकृत व्यक्ति भी ऐसे नहीं कर सकता है। एकांत में अपने घर में अपने बेड पर अपनी पत्नी को गोद में रख लो ठीक है, लेकिन सभा में ऐसे गोद में बैठा तो ये बहुत असमंजस की बात हो रही थी। परंतु भगवान भगवान है, उनकी लीला है और श्री पार्वती जी भी इस बात को पसंद करती हैं कि ठीक है सभा हो चाहे कोई हो, मुनि हो या कोई हो, मैं अपने पति के गोद में बैठूंगी। अब वो भगवान सिंह की महिमा समझती तो कहते हैं कि इतने बड़े होकर के और भार्या के साथ एक साथ बैठे हैं उसको गोद में लेकर के, आहा स्वरूप देखो जटाधर है, ये जटाधर है। जटा बढ़ाने का मतलब यही है ना कि इनको स्त्री आदि से कोई मतलब नहीं है, जटाधर हो, कभी कंघी किए न तेल लगाओ न सैलून में गाओ, कभी कुछ किए नहीं, ऐसा मतलब कि ये पूर्ण वैरागी है, जटाधर हो, तीव्र तपा और तीव्र तपस्या करते हैं, यह प्रसिद्ध बात है संसार में, ब्रह्मचारियों में सबसे श्रेष्ठ है। देखो इनकी दशा, ब्रह्मवाद सभापति और जितने भी लोग वेद का उपदेश करते हैं भगवान की बातें करते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं शिव जी, पर ऐसा हो करके भी अंकी कृत्य स्त्रियों से गत ही प्राकृत गत हरी, ये इस तरह से सभा में बैठे हुए हैं अंकी कृत्य, अरे बगल में बैठा करके प्रवचन करते तब भी चलता, ये अंक में लेकर के बैठे हुए गत हरी प्राकृत गत ऐसे बैठा है जैसे कोई निर्लज्ज संसारिक व्यक्ति बैठता है। वो संसारिक व्यक्ति है जो स्त्री आदि को अपने जीवन का सब कुछ समझ चुका है, वह स्त्री को कभी छोड़ेगा नहीं, कहीं भी जाए वह साथ में अंक में बैठाता रहे। तो प्राकृत व्यक्ति निर्लज्ज व्यक्ति जैसे स्त्री के साथ व्यवहार करता है वैसे ही हो गए। फिर चित्रकेतु महाराज कहता नहीं 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 उससे भी गए दीते हो गए, वो अभी बेचारा मिलता है तो काम तो मिलता है पत्नी से, प्रायश प्राकृता तो स्त्री रहस्य भी बहती, प्राय देखा गया है कि प्राकृत व्यक्ति भी अत्यंत विषय लंपित व्यक्ति भी स्त्री से एकांत में मिलता है रहस्य, परंतु अयम महाव्रत धर विभरती सदसी स्त्रिय, ये महाव्रत धारण करने वाले समस्त देवताओं के भी गुरु ऋषियों के गुरु जो सदसी स्त्री अंबी भारतीय सभा में स्त्री को टांग कर बैठे हैं। देखिए उनकी दशा, ये महाराज चित्रकेतु के जीवन का वह मोड़ आ गया जहां पर इनको अब असुर योनि में जाना पड़ेगा। जो कुछ भी था इनका हृदय शुद्ध था, ये भगवान सिंह की महिमा गा रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, लेकिन ऐसे समय पर कर रहे थे कि इन पर अपराध लग गया। और इस तरह से किसी को बोलना, और जब गोद में रह करके पत्नी को बैठा है तो आप ही कोई दूसरे रास्ता पकड़ के चले जाइए, आपको इतना बुरा लग रहा है तो रास्ता दूसरा पकड़ा जा सकता था। तो दूसरी बात यह थी कि उस सभा में बड़े से बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, क्या उनमें से एक को भी ऐसा नहीं लगा कि शिव जी आज 50 आसन कर रहे हैं? सोचना चाहिए था ना, आज तक कोई शिव जी पर आक्षेप नहीं किया। तो ये चित्रकेतु अब अपने अधिकार से बाहर जा रहे थे, ये नहीं समझो कि यहां और बड़े बड़े ऋषि हैं, वे क्यों नहीं बोलते हैं शिव जी को, क्या बात है? ये सोचना चाहिए थे, वो सोचे नहीं, विरोध करने लगे भाई सभा में। तो भगवान तो गंभीर है, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान अपनी तत्क्षिप्ता प्रहास्या अगाध धीरता, हे महाराज परीक्षित, भगवान तो अगाध बुद्धि के हैं, भगवान शंकर उनकी बुद्धि की कोई माप नहीं कर सकता, वो तो तत्काल समझ गए चित्रकेतु के भाव को, और इनके इनका विनोदी स्वभाव है, विनोद भान को कह रहे हैं। तो भगवान सिंह प्रहस्य वे हास्य सुन करके, इतनी बड़ी आलोचना, इतनी बड़ा क्रिटिसाइज सुन करके भगवान सिंह को कोई दुख नहीं लगा, वे हंस रहे थे, हंसे, लेकिन तुरंत भगवान सिंह ने पार्वती की ओर देखा तो फिर चुप हो गए, नहीं तो अब डर रहा था भगवान की ये रंग हो जाएगी, ऐसा बोल रहा है आकर सभा में और उनके हंस रहे हैं, कुछ एक्शन लेना चाहिए ना। उसके माता पार्वती की कहानी का यह अभाव था, इसलिए भगवान तुरंत फिर चुप हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अति भगवान भी शिव जी भी जो सर्वसमर्थ है, क्रोध काम आदि को जिन्होंने जीत लिया है, भगवान में जिनका मन सदा रहता है उनको भगवान कहा गया, वो समर्थ है। वास्तव में इस संसार में और कुछ भी सह लेना आसान है, लेकिन अपमान सहना आसान नहीं, अपमान से व्यक्ति क्षोभित हो जाता है, वो भी सभा में यदि उसका अपमान किया जाए तो। भगवान तो भगवान है, यहां से उनकी अगाध बुद्धि है, तो तीसरी बधु व सदसी, फिर हंस करके चुप हो गए उस सभा में। तो प्रश्न होगा, और सभा में बैठे हुए और लोग भी तदनिव्रता, सभ्याश्च तदनिव्रता, भगवान शिव चुपचाप हो गए तो वे लोग भी चुपचाप हो गए, कोई कुछ कहा नहीं। तो किसी वैष्णव की निंदा कोई सुन रहा हो, अन्य वैष्णव का कर्तव्य है कि निंदक वैष्णव को जवाब दे, या कोई वैष्णव की निंदा कर रहा है तो उसको रोके, अपनी शक्ति रहते हैं। लेकिन क्या इस सभा में लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि वैष्णव निंदा की जा रही है, और सबसे बड़े वैष्णव की निंदा हो रही है, शिव जी की निंदा? लेकिन वे लोग भी समझते थे कि यह निंदा नहीं है, यह चित्रकेतु महाराज का एक विरोध है। भगवान शिव की महिमा को प्रकारांतर से वे व्यक्त किए थे, सभा को लोग जानते थे, इसीलिए किसी ने विरोध नहीं किया। असल में भगवान शिव का रुख देख रहे थे, भगवान शिव बिल्कुल शांत थे, हंस रहे थे, अतः वे लोग भी शांत रह गए, चुप हो गए। तो भगवान तो भगवान है, लेकिन माता पार्वती जी अब गर्म हो गई, ये भगवान की ही प्रेरणा थी हृदय में, पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। इति अतद वीर्ज विभिषि ब्रगाणे बह्व शोधनम रुषाह देवी धृष्ट और वीर्ज तात्मा अभिमानी ने, देवी ने तुरंत विचार किया है, यह मूर्ख भगवान शिव की महिमा को नहीं जानता है, कोई स्त्री उनकी गोद में बैठे चाहे मस्तक पर रहा चाहे कहीं भी, उनके भीतर कोई काम विकार संभव है ही नहीं, जैसे सूर्य मंडल में बर्फ या अंधकार संभव नहीं है, उस तरह भगवान शिव में काम विकार संभव नहीं, वो ईश्वर हैं, उनके आचरण की आलोचना नहीं की जा सकती है। तो माता पार्वती सोच रही थी मन में कि अतद वीर्ज विभिषि, यह शिव जी के वीर्ज को प्रभाव को नहीं जानता है और इसलिए बहुत बहुत अशोभन बात बोल रहा है, यह धृष्ट है, यह ढीठ है, और उसको बहुत बड़ा अभिमान हो गया है कि मैं इंद्रिय जय हूं, जितेंद्रिय, यह उपहास कर रहा है शिव जी का कि शिव जी जितेंद्रिय नहीं है, वह इंद्रिय पर बस है, वे काम के बस में है, इसलिए तो स्त्री को गोद में बैठा कर प्रवचन कर रहे हैं। अरे कम से कम प्रवचन के समय में तो दूर रख देना चाहिए था। लेकिन पार्वती जी मन में ये विचार कर रही कि यह शिव जी को काली बता रहा है, अपने को जितेंद्रिय होने का इसको भाव है, अभिमान में है, निर्जितात्मा अभिमान में ये मन में सोच रहे थे, अतः इसको दंड देना चाहिए। इसको दंड बहुत जरूरी है। सभा में सब लोग चुप थे, पति जी भी चुप थे, लेकिन श्रीमती जी अब एक्शन लेना चालू कर थे, क्योंकि उनको तो बहुत दुख लगा। स्त्रियों में लज्जा होती है, अब शिव जी को बोले तो शिव जी को दुख नहीं लगा, माता पार्वती जी को बहुत दुख लग गया। तो वो बोलने लगी, पूछे भी नहीं शिव जी से कि इसका कुछ डांटा जाए, क्या किया जाए, सीधा बोलना चालू कर दिया। वो जानती थी कि जो बोलेंगे तो उसको शिव जी भी नहीं रोक पाएंगे, उनकी क्या हिम्मत है, चाहे दूसरा क्या बोल सकता है। तो बोलने लगी पार्वती व्यास, अयम की मधुना लोके शास्ता दंड धर प्रभु अस्मद विधानम दुष्ट नाम निर्लज्जा नाम चि प्रकृत। हम लोग तो निर्लज्ज है, लज्जा नहीं आ रही है सभा में कि हम लोग छट कर बैठे, निर्लज्ज हम लोग, दुष्ट है हम लोगों में, दोष आ गया है, दूषित हो गया है, गंदा हो गया है। तो हमारे जैसे निर्लज्ज और अशुद्ध लोगों को दंड देने के लिए यही नियुक्त किया गया है क्या? यही नया भूस बना है कि कोई गलती करे तो उसको दंड देगा क्या? यही समर्थ है या यही दंड देने के लिए आया है, योग्य है? अयम की मधुना लोके शास्ता दंड धर प्रभु। मान लीजिए हम लोग गलत कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, हम लोग नीच व्यक्ति हैं, निर्लज्ज हैं, तो क्या हम जैसे लोगों को यही दंड देने वाला है? यही शास्त्र है, यही शासक है, यही शिक्षा देगा? चित्रकेतु महाराज के कहने का एक प्रकार से बाह्यासक हो रहा था ना कि ये लोग गलत कर रहे हैं, निर्लज्ज हैं, सभा में लाज करनी चाहिए, लेकिन लाज भी खो बैठे हैं, बेशरम हो गए हैं। माता पार्वती स्वयं इस बात को कहते ठीक है, यदि मान लिया जाए कि हम लोग बेशर्म हैं, निर्लज्ज हैं, एकदम नीच है, गिर गए हैं, तो हमारे जैसे लोगों को यही दंड देने वाला है क्या? फिर शब्द से प्रश्न कर रहे हैं। अब यही हम लोगों को शुद्ध करेगा, हमारा हित करने के लिए है। विप्रकृत कहा था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि विशेषण प्रकर्षण कृत, जो विशेष रूप से दंड दे करके शासन करके हमको शुद्ध करे, तो यही है क्या? अब तो शिव जी को शुद्ध करने वाला यही जन्म है ना? लगता है कि शिव जी के पास आज तक कोई बड़ा व्यक्ति आया ही नहीं, यदि आया होता तो उनको डांटे होता ना, जैसे ये डांट रहा है, क्योंकि शिव जी का जो आश्रम है आज का तो है नहीं, ये तो अनादिकाल से है, जब से भगवान शिव है तब से पार्वती जी है, और पता नहीं कितने लाखों लाख ऋषि मुनि आए और गए, परंतु भगवान शिव की जो रहने की स्टाइल है उसमें बदलाव हुआ नहीं। इस पर माता पार्वती कहते हैं, मैं वेद धर्म किल पद मुझानी, क्या धर्म का सच्चा रहस्य पद मुझानी ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं क्या? ब्रह्मा जी ने कभी नहीं रोका शिव जी को ऐसा करने से, मैं तो गोद में बैठी हूं बार बार, ब्रह्मा जी भी कभी नहीं रोके। पद्म योनि, पद्म से भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न कमल से जिनका जन्म हुआ है, जो सबके पिता हैं, पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने कभी भी शिव जी पर कोई आक्षेप नहीं किया। तो नवेद धर्मम किल पद्म योनि, लगता है ब्रह्मा जी धर्म का रहस्य नहीं जानते हैं, और न ब्रह्मपुत्र और न तो उनके पुत्र जानते हैं। ब्रह्मा जी का और मरीषि अभी पुत्र है, वो भी धर्म का रहस्य नहीं जानते हैं। अंगिरा फोला कृति अभी कोई नहीं जानते हैं, न भृगु नारदाद्या और उनके पुत्र भृगु और नारदादी भी कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि वो तो रोज ही आकर के कथा सुनते हैं, फिर भी शिव जी को कुछ नहीं कहे। नारद जी तो आते ही रहते हैं, लगता है नारद जी को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, भृगु जी का ज्ञान नहीं है, नौ कुमार चारों कुमारों को कोई धर्म का ज्ञान नहीं है, भगवान कपिल देव को ज्ञान नहीं है, मणि महाराज को नहीं है, क्योंकि योनि निषेधम अभिवर्तनम धर्म, तो अतिवर्तन शास्त्र का उल्लंघन करने वाले सिंह को कभी वो दंड दिए नहीं, कुछ कहे नहीं। तो इससे तो अब यही सिद्ध होता है ना कि ब्रह्मा जी धर्म का रहस्य नहीं जानते हैं, नारद जी, भृगु जी, अंगिरा जी अथवा सनत कुमार, कपिल भगवान, अर्जुन महाराज, कोई भी सिंह जी को आज तक ऐसा नहीं कहा कि ये क्यों कर रहे हैं। इसका अर्थ है वो लोग धर्म का रहस्य नहीं जानते हैं। और यही अब धर्म को देखने वाला आ गया है, यही देख रहा है कौन गलत करेगा, कर रहा है तो उसको दंड देने के लिए तैयार हुए। नवेद धर्म कृतज्ञ जोनी, ये व्यंग है माता पार्वती का, हम लोग बेवकूफ थे, कोई ठीक नहीं किया शिव जी को। और यह धर्मज्ञ आ करके अब शिव जी की मरम्मत कर रहा है, अब ये ठीक करने को पड़ा हुआ। ऐसा मनुभ्य पदार्थ जुग्म जगत गुरु मंगल मंगलम सहम यह छत्र बंधु करें सूर्य प्रशास्त भ्रष्ट पदेव दंड। माता पार्वती कह रही यह दंड दे रहा है शिव जी को, जिनके चरण कमलों की आराधना ये सब करते हैं, ये सब ब्रह्मा आदि, तो ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु नारद आदि मनु और कुमार, ये सभी भगवान शिव के पदाब्ज जुगमन चरण कमल जुगल की आराधना करते हैं, जिनका नाम ऊपर, ये सब लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कि कृपा चाहते हैं। ऐसे प्रभु को जो जगत के गुरु हैं, सबके हितोपदेष्टा हैं, मंगल मंगल स्वयं, जो स्वयं धर्म के स्वरूप हैं, स्वयं परम मंगल में हैं, ऐसे भगवान को परिभूय सूर्य परिभूय यहां सभा में बड़े बड़े विद्वानों को पराभूत करके उनका पुरस्कार करके अर्थात उनकी उपेक्षा करके वह भगवान शिव को प्रशास्ति ये प्रशासन कर रहा, दंड दे रहा, धृष्ट या भीठ है, तब अवन ही दंड, यही दंड है, इसी को दंड देना है। ये दंड देने चला है शिव जी को, अब इसी को दंड दिया जाएगा, अवन ही दंड, यह दंड, ये अपराधी। अब इतना कह करके दंड देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई माता पार्वती, पूरा क्रोध में हो गई थी। अब इसको मैं दंड दे रही हूं, फिर उसकी अयोग्यता को, चित्रकेतु महाराज की अयोग्यता को कह रही हूं, नाम में रहते वैकुंठ पाद मूले को सर्पण संभावित मतिष्ट दशाद हुई परिपाशितम, यह स्तब्ध मति संभावित मतिष्ठ, संभावित का कोई अपने से ही स्वयं ही अपने को बहुत बड़ा समझ रहा है, अपने को बहुत बड़ा समझ रहा है, स्तब्ध है, अनम्र है, उदंड है। अतः यह भगवान विष्णु के चरण कमल के मूल में रहने योग्य नहीं है, ऐसे दुष्ट को भगवान के चरण में नहीं रहना चाहिए। ये पार्षद हो चुके थे भगवान के, पार्षद मतलब वैकुंठ में नहीं गए थे, इस जगत में थे, इस तरह भगवान को बहुत निकट पहुंचे थे, लेकिन माता पार्वती कहते हैं कि अवन वैकुंठ पाद लेने के सरपरम न अर्हति, यह भगवान विष्णु के चरण कमल के पास जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अपने से ही अपने को बहुत बड़ा मान रहा है, अनिंद्र है, उदंड है, अब साथ दे रही है। अतः पापी असिन जोनी आश्रम जाह दुर्मते, अतः अरे दुर्बुद्धि तुम पापी आश्री जोनी में जाओ, अभी देवता हो तुम, भगवान के चरण कमल के पास रहने योग्य नहीं हो, तुम्हारा अभिमान जो बढ़ा है इसीलिए कि तुमको भगवान का दर्शन हुआ है, इसीलिए तुम सिंह जी के सिर पर भी पैर देना चालू किए, अतः तुम आश्री जोनी में चले जाओ। कैसी आश्री जोनी? पापी ऐसी, जिस शरीर से केवल पाप ही किया जाता है, बुरे कर्म किए जाते हैं, उस आश्री जोनी में जाओ, जथे है भूय महात्म कर्ता पुत्र के विषय, जिससे कि फिर तुम किसी महान पुरुष का इस तरह से अपराध न कर सको, जाओ। इतना बड़ा साथ दे दिया, बहुत बड़ी बात हो गई, इतने बड़े भक्त को जो भगवान के श्रवण कीर्तन में मस्त थे, भगवान में जिनका वास्तव में प्रेम था, और उनको इस तरह से साथ दे दिया गया, यह उचित बात नहीं थी वास्तव में। परंतु प्रकारांतर से देखा जाए तो चित्रकेतु महाराज को शीघ्र ही अपने पास बुलाने के लिए भगवान की यह कला थी, उपाय था। चित्रकेतु महाराज के भगवत विजय को और प्रवृत्त करने में कारण हो गया। असुर शरीर में जाएंगे चित्रकेतु महाराज, लेकिन उस शरीर में इससे सौ गुना भक्ति बढ़ जाएगी उनकी, यह देखा गया। तो माता पार्वती का साथ भी चित्रकेतु के लिए वरदान सिद्ध हुआ। माता पार्वती सौ साप दे रही थी, अतः पापी अशुभ जोनी आश्रम जाहे दुर्मते, जाहे का अर्थ जाए, जथे अभोग महापान न करता पुत्र किल विष, और पुत्र कह रही है। इसके द्वारा यह भी सिद्ध होता है कि माता पार्वती के हृदय में दया है, वो भी समझ रहे हैं कि इस तरह से ये दंड रहेगा तब तो भगवान का चरण कमल से मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्हें कृपा करने के लिए दंड दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा होगा तब तुम किसी भी सत्पुरुष का या वैष्णव का, महान पुरुष का इस तरह अपमान नहीं कर पाओगे, ये कह दिया। तो बहुत कुछ आशा की जा सकती थी कि चित्रकेतु महाराज भी साथ दे सकते थे। तो चित्रकेतु महाराज बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो इनमें भी सामर्थ्य थी साथ देने की, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। एवं सप्तचित्रकेतुर्दिमाना दौर्य सह, इस प्रकार हंसी हंसी में जब चित्रकेतु महाराज को ऐसा घोर साफ हुआ तब वो विमान से उतरे, अभी उतरे नहीं थे, उतर करके और माता पार्वती जी को प्रणाम किए। प्रसाद वंश सत्य निर्धा निर्धा नम्रण भारत, जो विमान से उतर गए और उतर करके आकर के माता जी को प्रणाम किए, नम्रण मूर्धना सिर बिल्कुल झुक गया था चरण में पार्वती जी के, प्रणाम किए और कहने लगे चित्रकेतु वाच। चित्रकेतु महाराज बोले, प्रतिग्रहण तो शापम आत्मने अंजलि ने अंबिके, हे अंबिके, हे माता, माता पार्वती जिनको अंबिका कहते हैं, हे अंबिके, मेरे प्रति जो आपने साप दिया मैं उसको सिर से स्वीकार कर रहा, मैं स्वीकार कर रहा। क्यों? क्योंकि देवे मर्त्या जब प्रत्यम पूर्व दुष्ट होता से तक, देवताओं के मुख से किसी मनुष्य के लिए कुछ बात निकल जाती है तो वह पहले से ही उसके कर्मानुसार होने वाला होता है, तब देवताओं के मुख से निकलता है। मुझे आश्रम लेने में जाना था इसलिए आपके मुख से यह निकला हुआ है, तो मुझे असुर शरीर प्राप्त करने में कोई हिचक नहीं है, मैं आपके साथ को अंजलिना प्रतिग्रहण में हाथ जोड़ करके स्वीकार कर रहा हूं। अंजलिना